शांति। बाबा के इस पावन मन भावन परिसर में आप सभी ज्ञान की गहराई और तपस्या करने आए हैं। कुदरत की गोद में बसा हुआ और योग के वाइब्रेशन से भरा हुआ बाबा का ये परिसर सबको पसंद आता है। पिछले 25 सालों से तो यहां 6 मास विंग्स के मेहमान और फिर बाबा के सीजन में 6 मास हमारे विदेश के बीके भाई बहने आते रहे। भारतवासी बीके भाई बहनों को मौका ही नहीं मिलता ये ड्रामा और कोरोना का शुक्रिया कि ड्रामा ने परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेहमान भी नहीं बुलाने हैं और विदेश वालों को भी आने का इंडिया गवर्नमेंट वीजा ही नहीं देती। तो हमारे बाबा के भारतवासी बच्चों को ये चांस मिल गया। विदेशी भाई बहने जब आते तो हम देखते थे कि ज्ञान सरोवर का एक एक कोना एक एक पहाड़ी पर बैठ के, क्योंकि उन लोगों को साइलेंस बहुत अच्छा लगता है और नेचुरल सराउंडिंग अच्छा लगता है, तो वो लोग पूरा कोने कोने में को यूज करते थे। आप सबको भी मौका है। सेंटर में तो हम क्लास करते हैं और भागते हैं, माताओं को घर काम नौकरी पर जाना, भाइयों को भी अपने नौकरी धंधे पर जाना, तो फटाफट भागते हैं, फुर्सत नहीं होती। बाबा ने ये भट्टी के प्रोग्राम बनाए तो हम अपनी उन्नति का बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, विशेषकर जो साइलेंस पावर का टॉपिक है आज। मुरली में भी बाबा कहते हैं कि साइंस पावर और साइलेंस पावर। तो साइंस पावर के बारे में तो हम जानते हैं, प्रकृति की शक्ति, प्रकृति का जगत जिन सिद्धांतों पर काम करता है और उससे जो हमें टेक्नोलॉजी मिली है वो साइंस पावर है। उन मूल सिद्धांतों को विज्ञान के द्वारा खोजा जाता है आजकल। द्वापर युग का आदि का समय जब ऋषि मुनियों ने साधना से भी प्रकृति जगत के सिद्धांतों को खोजा। आप जानते हैं कि ऐसे कितने ऋषि मुनि हुए जिन्होंने उस जमाने में शून्य की खोज की, अवकाश की खोज की, मेडिसिन की खोज की, कितने टेक्नोलॉजी उन्होंने भी खोजी और वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि पिछले 2 युगों से ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये सिद्धांत खोजिए और उन सिद्धांतों पर फिर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिन टेक्नोलॉजी से अनेक सुविधा के साधन बने और मानव जीवन को कंफर्ट्स प्राप्त हुए। आज से 100-200 वर्ष पूर्व की भी बात करें तो कहां साधन थे। लोग एक गांव से दूसरे गांव चल के जाते थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, भोजन के भी अग्नि पर मिट्टी के बर्तनों में, और आज कितने साधन बन गए हैं लिखने के, पढ़ने के, प्रिंटिंग के। तो इससे भौतिक रूप से ये साइंस की शक्ति कि भौतिक रूप से मानव जीवन साधन सुविधाओं से संपन्न बन गया, परंतु कई बार मैं ऐसा पढ़ती भी हूं सुनती भी हूं कि भारत में तो ऐसे कोई वैज्ञानिक हुए नहीं, माना ये सारी जो खोजें हैं लेटेस्ट विदेशों से हुई, भारत से क्यों नहीं। क्योंकि भारत का जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी, विदेशों की जो संस्कृति है वो भौतिकवादी है और भोगवादी है, इसलिए उनका क्षेत्र वही उनके ध्यान में आया। लेकिन भारत की संस्कृति शुरू से आध्यात्मिक रही, इसलिए यहां अंतर खोज, आत्मशुद्धि, परमात्मा प्राप्ति, ये चीजें महत्व की रही, और इसलिए भारत में कैरेक्टर, वैल्यूज, धर्म, दया, दान, ये चीजें महत्व की रही। और अल्टीमेट तो वही, आज जो सिचुएशन हम सब देख रहे हैं कि चीजें क्वालिटी बनती जा रही, परंतु जीवन की क्वालिटी डाउन होती जा रही है। साधन बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन वैल्यूज एंड पावर्स आत्मा में जो होने चाहिए वो नहीं है। इसलिए सुख के सब साधन सुविधाएं होते भी मानव जीवन में अभी भी क्या चीज नहीं है, शांति और सुख, संतुष्टता नहीं। इनर पावर्स नहीं है इसलिए परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते हैं, या टेंशन में आ जाते हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए जो हमारी मूल आंतरिक क्वालिटीज है वो कम हो रही है, इसलिए कितने भी साधन सुविधा होते हुए भी खुशी नहीं, जीवन में आनंद नहीं। कितनी विडंबना है कि इंसान को जो चाहिए वो नहीं है, और उसने जो भी प्रयास किए सुख और शांति को पाने के लिए, उसे साधन और सुविधाएं मिली, इंफॉर्मेशन मिली, परंतु जो चाहिए वो नहीं मिला। दुनिया भर, बाबा कहते हैं ना, दुनिया भर की बातें जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये समय है, दूर बैठे दुनिया भर की बातें, गांव में बैठे भी अब इंटरनेट, मोबाइल, टीवी के माध्यम से सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। पर बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया की बातें जानते हैं, अपने आप को ही नहीं जानते। जो बेसिक ट्रुथ्स है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये संसार का खेल क्या है, जन्म मरण का चक्र क्या है, आलोक परलोक क्या है, कर्म गति क्या है, ये मूल सनातन सत्यों को नहीं जानते। इसलिए सब कुछ पाने के बाद भी खाली है। आज दो बीमारी सबसे ज्यादा इंसान महसूस करता है, एक खालीपन। खालीपन, मेरे में कोई ताकत नहीं, मेरे में कुछ नहीं, खालीपन महसूस कर। और दूसरा अकेलापन, अकेलापन। अनेकानेक मित्र संबंधी हैं, पर मेरा कोई नहीं, अकेलापन महसूस करते। और उस अकेलेपन के कारण कितने लोग सुसाइड करते। और आजकल जो ये कोरोना बीमारी निकली, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, उसमें कईयों ने तो अकेलेपन के कारण, क्योंकि उस बीमारी में अकेला कर दिया जाता है, कोई पास नहीं, कोई साथ नहीं, और इंसान तकलीफ में हो तो और कमजोर हो जाता है, उसके कारण कईयों ने शरीर छोड़ा। भगवान ने हम बच्चों को वो ज्ञान दिया जो जीवन के लिए जरूरी, और खुद भगवान हमारा साथी बन गए। मैं तुम बच्चों की सेवा के लिए आया हूं, कितना आत्मा को आथत मिलती है, कितना सुकून महसूस होता है कि जहां हम याद करें बाबा को, और वहां बाबा हमारे साथ है। कोई देहधारी हर क्षण हर स्थान साथ नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकता है। और जो मनुष्य आत्मा को चाहिए, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है, वही हमें चाहिए। देखो, खुद को जब देह समझते थे तो देहभान के कारण भौतिक आवश्यकता उनको ही हम मूलभूत आवश्यकता समझते थे, कि भी इंसान की मूलभूत प्राथमिक भौतिक आवश्यकताएं कौन सी है, हवा, पानी और खुराक। हवा, पानी और खुराक। अगर हमें श्वास लेने के लिए स्वच्छ हवा न मिले तो हमें घबराहट होने लगती, सफोकेशन महसूस होता है। हम कहेंगे भाई खिड़की दरवाजे खोल दो, घबराहट हो रहा है, स्वच्छ हवा मिले श्वास लेने के लिए। अगर हमें समय पर पीने के लिए योग्य निर्मल जल ना मिले तो कितनी तड़फन होती, उस समय कितने भी अच्छे भोजन का थाल लेकर आ पाओ तो व्यक्ति पहले क्या कहेगा, भाई पहले पानी दो, पहले मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी। योग्य पौष्टिक खुराक ना मिले तो व्यक्ति रोगिष्ट और कमजोर बनता जाता है, कुपोषण का शिकार कहते हैं ना उसको। तो हवा पानी और खुराक, रोटी कपड़ा और मकान ऐसे कहते हैं ना, हाँ ये बेसिक भौतिक आवश्यकता है। परंतु हम केवल शरीर नहीं है, हाँ ये सत्य बाबा ने हमें बताया। इसलिए देखो हवा पानी खुराक रोटी कपड़ा मकान भरपूर जहां है वो लोग भी दुखी है, उनको भी शांति नहीं है। जो धनाढ्य देश है वहां मानसिक रोगी कितने हैं, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है। बाबा ने तो हमें प्रथम लेसन में ही ये सत्य बताया कि हम आत्मा हैं, हम चैतन्य हैं, हम पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हैं। इसलिए ये सत्य नहीं जानते हैं, इसलिए भौतिक सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी मानव जीवन सुखी नहीं है, शांति से भरा हुआ नहीं। और वो शांति नहीं है इसलिए टेंशन की बीमारी, बहुत टेंशन है। छोटे बच्चे भी कहेंगे मम्मी एग्जाम है, बहुत टेंशन है, और बच्चे की एग्जाम है इसलिए माँ बाप को उससे भी ज्यादा टेंशन है। जीवन में धोखा मिलता है, सच्चा प्यार नहीं मिलता है तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, दिल टूट जाता है। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं। जीवन में खुशी नहीं है, ड्राइनेस है, शुष्क जीवन है। अगर जीवन में आनंद नहीं है तो जीवन नीरस महसूस होता है। देखो खुशी पाने के लिए इंसान ने कितने साधन और स्थान बनाए, पर उनको पता नहीं है कि सच्चा शांति सुख आनंद कहां से मिलता, किसमें धारण होता है, कौन देता है। बाबा ने हमें ये मूल सत्य ज्ञान सिंपल तरीके से सहज शब्दों में दिया। आज द्वापर युग के बाद और द्वापर में भी हिंदू धर्म क्यों डाउन हो गया, क्योंकि हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान है वो संस्कृत में था और आम जनता समझती नहीं थी। पंडितों ने ब्राह्मणों ने मोनोपोली कर ली थी। हम ही आपको समझा सकते कि क्योंकि अपने आप हम समझ नहीं पाते। विद्वानों के हाथ की मोनोपोली हो गई, इसलिए लोग के स्वमान डाउन हो गए। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म उस समय उसका प्रभाव क्यों ज्यादा आ गया, क्योंकि उनकी लोक भाषा में साहित्य था, उनका अर्धमगधी पाली भाषा में उनकी सारी किताबें थी, तो लोग खुद पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, तो उन पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। बाबा की ये विशेषता देखो, आज शरीर के लिए हम क्यों कहते हैं हवा पानी खुराक चाहिए, क्यों पेट्रोल नहीं, हवा पानी खुराक क्यों चाहिए हमें? अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो हवा पानी खुराक ही क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर हवा पानी खुराक से बना है। शरीर किससे बना है? हवा पानी खुराक से। 70% तो कहते हैं ना पानी, इसलिए कहते हैं ना मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर। हवा पानी खुराक से शरीर बना है, इसलिए हवा पानी खुराक चाहिए। इस प्रकार हमें जीवन में क्यों शांति चाहिए, क्यों सुख चाहिए, क्यों आनंद चाहिए, क्यों प्यार चाहिए, क्यों शुद्धि सत्य चाहिए, क्यों ज्ञान और शक्ति चाहिए? क्योंकि मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप हूं। आत्मा क्या है? आत्मा कोई चीज नहीं, कोई तत्व नहीं। आत्मा तो लाइट है, माइट है। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। हमारे जो अनादि गुण है वो कौन से हैं? यही 7 गुण है ना, आत्मा के मूल 7 गुण, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इसलिए हमें शांति चाहिए। घर में सुख के सब साधन हैं, पर अगर आपस में मनमुटाव है, अनबन है, नाराजगी है, कलह क्लेश है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इंसान क्या कहता है? और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए घर में, क्योंकि मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप। जो ओम शांति बाबा ने शब्द दिया हम सबको, महामंत्र साबित हुआ, क्योंकि हर आत्मा को शांति चाहिए। ओम शांति माना बाबा ने हमें पक्का कराया कि मैं शांत आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म, शांति आत्मा से कनेक्टेड है, स्व से कनेक्टेड। इसलिए जैसे ही हम शांत बैठते हैं तो जैसे हम अपने तरफ से सिमट जाते हैं, अपने तरफ केंद्रित होने लगते हैं, क्योंकि वो मेरा निज गुण धर्म है, वो मेरी ओरिजिनल स्थिति है। लोग शांति के लिए देखो कोई हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं, जितना समय कुदरत की गोद में होते हैं शांति महसूस होती है, वो प्राकृतिक शांति, क्योंकि नेचर भी अपने आप में प्योर है, ओरिजिनल, वो प्राकृतिक शांति है। जितना समय कुदरत की गोद में है अच्छा लगता है, जैसे ही अपने वास्तविक जीवन में जाते हैं फिर वही अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें, असंतुष्टता, टकराव, ये सब फिर अशांति का अनुभव कराते हैं। कोई अशांति नहीं है तो समझते हैं कि शांति। अखबार में आता है ना कि आज एवरेज शांति रही, कोई धमाल नहीं हुई। शांति की एब्सेंस को अशांति कहा जाता है, और ऐसी कोई अशांति नहीं हुई तो वो कहते हैं कि एवरेज शांति रही। शांति ओरिजिनल पावर है, शांति की एब्सेंस अशांति है, न कि अशांति की एब्सेंस है तो कहेंगे कि शांति है, नहीं। जैसे अंधकार कोई चीज नहीं, भाई कमरे में पूरा अंधकार है, अंधकार को दूर करो तो आप क्या करेंगे, दीवा करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, प्रकाश करेंगे। एब्सेंस अंधकार कोई चीज नहीं है कि हम भर भर के बाहर फेंके और कमरा खाली करें। प्रकाश ओरिजिनल चीज है, पावर है, और प्रकाश का एब्सेंस अंधकार है। तो शांति की सही परिभाषा भी लोगों को पता नहीं। बाबा कहते हैं ना, शांति माना स्वधर्म निज गुण अनुभूति की स्थिति। कई लोग शांति के लिए यज्ञ करते हैं, विश्व शांति महायज्ञ करते हैं, कितना वो लोग तिल जौ और सारा लकड़ा सब जलाते हैं कि शांति हो, कोई विघ्न है, आफत है तो यज्ञ करते हैं कि भाई वातावरण शुद्धि हो। पर ऐसे यज्ञ, तिल जौ घी होमने वाले यज्ञ कितने लोग कर सकेंगे। गरीब साधारण लोग को शांति पाने का अधिकार नहीं। इसलिए रियल शांति, बाबा ने विश्व शांति की विधि क्या बताई, आत्मशांति। आत्मशांति से विश्व शांति हो। हम हरेक शांत स्वरूप आत्मा है, और वो शांति की स्थिति हम अपनी बनाएंगे, इमर्ज करेंगे, वो स्मृति रखेंगे, तो आत्मा शांति से विश्व शांति। कोई शरीर छोड़ते हैं बिल्कुल सन्नाटा हो जाता, स्मशान में जाते हैं सन्नाटा, वो कहते हैं ना स्मशानी शांति है। शून्य को शांति नहीं कहते। वो स्मशानी शांति अल्पकाल की, जब कुछ खो दिया, शौक लग गया, तो स्मशान शांति, शून्य शांति। इसलिए सिर्फ चुप रहना वो साइलेंस पावर नहीं, साइलेंस पावर माना शुद्ध आत्म स्थिति की शक्ति को साइलेंस पावर कहते हैं। आत्मा के शुद्ध संकल्प की स्थिति, शुद्ध मनोस्थिति की शक्ति को साइलेंस पावर कहते हैं। और बाबा आकर उस चैतन्य शक्ति की शुद्धि का ही तो ज्ञान देते हैं। जैसे ही हमें सत्य ज्ञान मिला और हम अपनी आत्मस्मृति में स्थित हुए, हमने अपनी पवित्र शुद्ध आत्मस्थिति बनाई, तो हमें सच्ची शांति का अनुभव। कैसी भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, समस्याएं हो, पर उसमें भी, उन परिस्थितियों में भी हम अशांत नहीं होते। हमारे में गहरी हलचल विगर की शांत स्थिति रहती। इसलिए रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार हर गुण मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप, शुद्धि में शांति की अनुभूति होती। देखो फिजिकली भी आप बहुत काम किया है, थके हैं, पसीने से भरे हैं, और आप स्नान कर लेते हैं शीतल जल से, तो आपको कैसा लगता है? कितनी शीतलता, शांति का अनुभव होता है, फ्रेशनेस का अनुभव होता है, रीएनर्जाइज हो जाते हैं। सिर्फ अच्छी तरह स्नान कर लिया तो तरोताजा बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा की याद से क्यों हम रोज योग करते हैं? सदा पावन बाबा की याद से हम आत्मा भी पावन बनते हैं। योग स्नान है, ज्ञान भोजन है। भोजन कर लेते हैं, आपका अनुभव होगा कई बार हम बहुत लंबा समय काम करते हैं, थक जाते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, पर फिर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो जैसे ताकत आ जाती है। ज्ञान भोजन, जब मन बुद्धि में सत्य ज्ञान को भरते हैं, सत्य विचार, बाबा आकर हमें राइट थॉट्स देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती। फिर परिस्थितियां, बाबा कहते हैं ना, परेशान नहीं कर सकती। आपके अंदर वो सेंस आ जाती है कि आप परिस्थितियों को पार कर सकते। ये है स्पिरिचुअल पावर, इसको बाबा साइलेंस पावर कहते हैं। शुद्ध और शांत एकाग्र मन की स्थिति की शक्ति को साइलेंस पावर कहा जाता है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने व्याख्या की है, इंद्रियों के रसों की, इच्छाओं की हलचल से पर आत्मा की अचल स्थिति को साइलेंस पावर कहा जाता है। इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण इंद्रिय रस है। हर इंद्रिय का एक विषय है, रस है। देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, घूमने का रस, पहनने का रस, उसी के वश मन भटकता है ना। जैसे ही हम आत्मस्थिति में स्थित होते हैं, हम सबका अनुभव है कि हमारी भौतिक, दैहिक, सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं कम हो गई। इच्छा के वश ही तो इंसान भटकता है, ये हैं पर ये नहीं है, इनके घर में है, हमारे घर में भी हो, है ना, ये सारा इच्छाओं के वश मन भटकता रहता। वो क्या बात करते थे, किसी को देखा, बुद्धि डूब गई उसमें, चंचलता जो कहते हैं वो ये इंद्रियों के विषयी रसों से उत्पन्न होता है। और जैसे ही हम आत्मस्थिति में स्थित होने लगे, शुद्ध और शांत बनने लगे, मन शांत हो गया, हम एकाग्र होने लगे, हमारा मन से भटकना भी समाप्त हो गया है, तन से भटकना भी समाप्त। क्योंकि हमें अपने आप में ही सुख, आनंद, शांति मिलने लगी है। इसलिए जो कहते हैं ना, शांति की खोज वास्तव में आत्म खोज है। और बाबा का ज्ञान और योग हम आत्माओं को कितनी उच्च स्थिति पर ले जाते। और हमारा कनेक्शन योग में डायरेक्ट बाबा से, जो निरंतर, जो खुद ही सागर है, अखुट भंडार है और दाता है, बाबा से निरंतर कौन से वाइब्रेशन फैल रहे, हर चैतन्य वाइब्रेशन फैलाता है। चैतन्य मीन्स क्रियाशील, हर घड़ी वाइब्रेशंस, थॉट्स उत्पन्न होते ही रहते, यही चैतन्यता की निशानी। पर जब हम स्व में स्थित होते हैं, वो वाइब्रेशंस शांति के, आनंद के, ज्ञान के, पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, वो बनने लगते हैं। और बाबा से कनेक्ट होते हैं तो बाबा तो सदा दे ही रहा, सदा दाता है। जैसे प्रकृति जगत का सूर्य निरंतर प्रकाश और ऊर्जा देता है, उससे प्रकाश देने के लिए हमें कहना नहीं पड़ता, प्रकाश देने का कोई स्पेशल प्रोग्राम उसे नहीं बनाना पड़ता, वो है ही एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट। वो है ही प्रकाश का गोला, ऊर्जा का गोला, इसलिए निरंतर वो प्रकाश और ऊर्जा देता ही रहता है। ऐसे बाबा को हम ज्ञान सूर्य कहते हैं, ज्ञान सागर कहते हैं, शांति का अखुट भंडार कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं। ज्ञान मीन्स लाइट, प्रकाश। इसलिए भगवान को ही कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिरगमय। आप हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाओ, वो आध्यात्मिक प्रकाश, ज्ञान। इसलिए बाबा हमें अखुट संपूर्ण सत्य ज्ञान देते, जो और कोई नहीं दे सकता है, है ना। क्यों भगवान से ही ये सारी चीजें मांगते, वो उसका दाता है, सागर है। निरंतर जैसे एक योगी निरंतर योग के वाइब्रेशंस फैलाता है, बाबा निरंतर वो दे रहा है, बस कनेक्ट हो तो बाबा। तो इसलिए हमें बाबा से कनेक्ट क्यों रहना है, क्योंकि ये बाबा से कोई भौतिक रूप से तो कनेक्ट नहीं हो सकते ना, मनोमिलन है, स्नेह मिलन है, हाँ, भाव मिलन है। तो जितना बाबा के लिए प्यार, याद, भावना, श्रद्धा, उतना हम बाबा से, क्योंकि हमारे पास सही परिचय है, हम कनेक्ट होकर ये अनुभूतियां कर सकते हैं। बल्कि हम अपनी पर्सनालिटी भी, पीसफुल पर्सनालिटी, ब्लिसफुल पर्सनालिटी, पावरफुल, बाबा तो सब कुछ बताता है ना, नॉलेजफुल, हम अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं, क्योंकि हम योग से कनेक्ट होकर अपनी आत्मस्थिति ऐसी बना सकते हैं। अब कोई प्रश्न है तो पूछो। साइलेंस पावर, पावर ऑफ साइलेंस के बारे में और कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो पूछिए।
ओम शांति दीदी। दीदी, कर्म करते हुए पावर और साइलेंस कैसे बनाए रखें, इसके बारे में बताइए थोड़ा।
हाँ, कर्म ध्यान तो खींचता है और जीवन है माना, कर्म तो करना ही है, पर अगर हमारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो फिर कर्म करते हम अपनी इंटरनल स्टेज को बहुत शांत रख सकते। सिर्फ आपकी लगन जो है वो अपनी आंतरिक स्थिति और बाबा के प्रति हो, क्योंकि मोस्टली जो कर्म हम करते हैं वो तो रूटीन कर्म है, इसमें कोई बुद्धि ज्यादा चलानी नहीं पड़ती। रोज सब्जी काटनी है, रोज रोटी बनानी है, रोज झाड़ू पोछा करना, रोज वही दुकान खोलनी है, चीजें बेचनी है, ऑफिस में भी वही रूटीन वर्क करना है। तो हम सबका 95% वर्क रूटीन है, जिसमें बुद्धि चलानी नहीं होती। अगर वो बुद्धि आप अपनी बाबा के साथ लगाएं, ज्ञान के चिंतन में लगाएं, अपनी आत्मस्थिति से लगाएं, तो आप बहुत गहरी शांति की इंटरनल स्टेज आप बना सकते हैं। और ये कर्म में ही ज्यादा, क्योंकि क्रिएटिविटी तो बहुत कम करनी होती, सोचने पड़े और नया प्लानिंग करना पड़े, ऐसा काम तो बहुत कम होता है। वो तो जो बहुत खोज करने वाले लोग हैं, लेखन करने वाले लोग हैं, और ये आईटी में जो प्रोग्राम्स बनाने वाले लोग हैं उनको बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती, फिर भी हम अपने जो भी कर्म हैं वो शुरू करते एक क्षण बाबा को याद करके करें। आपस में किसी से भी मिलते हैं एक क्षण याद के साथ मिले, अगर इस प्रकार के अभ्यास हम करते रहे और लक्ष्य रखे कि जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं मुझे पूरा यहां से डिटैच होके बाबा को याद करें, ऐसे नहीं बाबा की याद भी चले फिर कामकाज भी फिर दूसरी बातें भी, ऐसा योग नहीं। पहले पूरा डिटैच हो जाओ कि ये समय में खास बाबा के लिए, अभी मुझे और बात नहीं सोचनी, तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस चाहिए। तो आप बहुत गहरी शांति की स्थिति बना सकते हैं और उसी में क्रिएटिव आइडिया टच होते हैं, सॉल्यूशंस टच होते हैं। और दूसरा एक नेचर बनाओ कि छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाना नहीं, हमें बहुत जल्दी बातों की हलचल में नहीं आना, कुछ भी हो अपने पर उसका प्रभाव कम लो। कई बार नेचर होती है ना कि राई को पहाड़ बना देते हैं, बात का बतंगड़ कर देते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग में आ जाते हैं, इसको हमें वहां हमें ज्ञान युक्त बन जाना।
लेकिन दीदी हम मानते हैं कि साइलेंस ऑफ पावर बहुत बड़ी चीज है और जब से ज्ञान में आया तो तब तो बहुत ही महसूस करने लगे हैं, लेकिन लौकिक में कई बार ऐसा होता है कि आप साइलेंस हैं लेकिन लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं कि ये तो बेवकूफ है इसको और दबाओ, तो तब क्या करें?
वहां बैलेंस करना है, साइलेंस पावर कहा गया, इसलिए राइट आंसर देना पावर के साथ। लोग हमें बुद्धू ना समझे, वो हमें उल्लू ना बनाए, पर समझे कि ये सेंसिबल व्यक्ति है और इनका जो आंसर हमें मिलेगा, जो प्रतिभाव मिलेगा वो भी पावरफुल मिलेगा, वो सत्य बात आप शांति के साथ उनको बता। हम क्या करते हैं कि अपसेट हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और बात बिगड़ जाती है, लेकिन आप आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पावर के साथ अपना डिसीजन बताओ।
उसके बाद भी लौकिक में लोग नहीं समझते हैं दीदी कई बार, फिर क्या करें?
फिर आपको जो स्टेप लेना है वो लो। ऐसा बाबा ने नहीं कहा है कि बुद्धू की तरफ बैठा, पर हम उनके जितने खराब भी तो नहीं हो सकते, वो जितना गिरते हैं नीचे उतनी गिरावट हम अपने कैरेक्टर में तो नहीं लाएंगे ना, परंतु हम सही रास्ते से सही कानून से सही विधि से भी हम उनको ठीक कर सकते हैं। यस,
ओम शांति दीदी। दीदी शांति की शक्ति में संकल्पों को, आत्माओं के संकल्पों को कैच करना और हमारा भेजना, क्योंकि अल्टीमेट तो यही है। हाँ। तो इसको कैसे हम बढ़ाएं और कैसे?
जितना आपका अच्छा योग, क्वालिटी ऑफ योग, बाबा तभी तो कहते हैं ना, बच्चे याद करते हैं, प्यार करते हैं, रूरिहान करते हैं, पर याद को तपस्या बनाओ, लाइट एंड माइट वाला योग बनाओ, एकाग्रता वाला, तो आपके थॉट्स जिन आत्माओं के प्रति आप भेजना चाहते हैं उनको भी अनुभव होंगे, या आपको मिलते समय आपके चेहरे से भी उनको आपके अंतर्मुखता, योग की स्थिति, आपका दिव्य भाव, ये अनुभव होगा। और जितना, क्योंकि जैसे आप देखो सिंपल कि पानी का तालाब है, वो पानी जितना स्वच्छ और स्थिर है तो हर चीज का प्रतिबिंब क्लियर कैच होगा, अगर वही पानी गंदा है, हिल रहा है, तो चीजों का प्रतिबिंब क्लियर कैच नहीं होगा आपको। सेम मनोस्थिति की बात है कि जितना हमारी मन की स्थिति शुद्ध और स्थिर, हलचल नहीं, जो मैंने कहा ना इच्छाएं और हमारे पर जो व्यक्ति की बातों का परिस्थिति का ज्यादा प्रभाव पड़ना, ये सारी हलचल नहीं है। आप साक्षी भाव में रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो आपको क्लियर कैच होगा। कोई के वाइब्रेशंस भी क्लियर कैच होंगे। जैसे मोटी बातों में किसी के मन में गंदी वृत्ति है तो वो भले कुछ बोलता नहीं है, पर जिस रीति से देखता है आपको फील होता है कि इनकी वृत्ति गंदी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, है ना? तो जितना हमारी ये स्टेज ऊंची बनती है तो क्लैरिटी आती जाती है। और कई बार बाबा भी हमें मदद करता है, ऐसी टचिंग्स हमें आती है बाबा के तरफ से, पर उसके लिए काफी स्थिर मन की स्थिति चाहिए, शुद्ध मन की स्थिति चाहिए। भाई आए थे ना शायद? अच्छा अच्छा।
ओम शांति दीदी। एक रस स्थिति बनी रहे पूरे दिन समान, मतलब एक स्थिति एक रस स्थिति में रहे, इसके लिए विशेष क्या किया जाए?
एक तो मेरा अपना ये लक्ष्य मुझे पक्का रखना है कि मुझे परिस्थिति अनुसार, बातों अनुसार, व्यक्तियों के व्यवहार अनुसार मुझे अपने आप को अपसेट नहीं करना है, क्योंकि मैं अपनी एक अवस्था बनाना चाहती हूँ। बातें तो आएंगी, जीवन है माना, बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, हम चाहे ऐसे सब चले वो तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे ये सबके बीच में मुझे अपनी अवस्था को ऊंची बनानी है। आप अपना लक्ष्य पक्का करो। दूसरी बात कि मुझे जो व्यवहार करना है, चाहे मेंटल लेवल से, वाचा लेवल से या कर्म लेवल से, वो दूसरों के व्यवहार अनुसार मुझे नहीं करना है, मुझे मेरी अपनी महानता और उच्चता अनुसार करना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, उसने बोला ऐसा ना कि मैं डिस्टर्ब हो गया, उसने किया ऐसा ना कि मैं रिएक्ट कर दिया, परंतु नहीं, मुझे मेरा जो बिहेवियरल लेवल है, चाहे मन का या वाणी का या कर्म का, मुझे मेरी अपनी ऊंचाई से रखना है, न कि दूसरों के अनुसार। नहीं तो हम तो लोलक की तरह हो जाएंगे, ये कुछ कहेंगे तो इधर डिस्टर्ब होंगे, इधर से कुछ किया तो इधर डिस्टर्ब होंगे। हम अपनी कोई स्थिति बना नहीं सकेंगे, मुझे बनाना है, क्योंकि सारे जीवन के सुख शांति का आधार तो मेरी अपनी स्थिति ही है ना। दूसरा जो मैंने पहले कह दिया कि पहाड़ को राय बना, छोटी बड़ी बातों को छोटा बनाओ। चलो ठीक है, बोला ना, अब मुझे क्या करना है? बस मुझे यही सोचना है, ये बोला, वो बोला, सबके बीच बोला, कैसा कैसा बोला, बस वो सोचते ही रहते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं। उसने जो कहा उसमें मुझे अपने आप में क्या सुधार लाना है, या मुझे उनको क्या जवाब देना? बस बाबा ने हमें रिएक्टिव बनना नहीं सिखाया है, जहां तक हो सके हमें अपनी दिव्यता से, पॉजिटिविटी से जवाब देना है। फीलिंग का नेचर भी बहुत अपसेट करता है हमें। हमें नॉलेजफुल बनकर चलना है, सेंसिटिव होके नहीं चलना है। यहां तो किसी भी तरफ से पत्थर आएगा, बाबा कहता है ना, युद्ध के मैदान में हो तो किसी भी तरफ से बात आएगी, पर जैसे बाबा कहते हैं ना युद्ध के मैदान में, हाँ वो थोड़ी कहेंगे भाई इधर से पत्थर नहीं मारना, अभी मैं इधर कर रहा हूं, नहीं वो तो कहीं से भी बंदूक फूटेगी। ऐसे हमारे जीवन में किधर से भी कोई बातें आएंगी, तो मुझे नॉलेजफुल बनना है। जितना आप सेंसिटिव बनेंगे जल्दी डिस्टर्ब हो। कोमल स्वभाव नहीं, ज्ञान युक्त स्वभाव। हम समझ सके उस आत्मा का नेचर है, उनके स्टाइल है, उनके आदत है, मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना।
ओम शांति दीदी। सभी भाई बहन जो ORC से आए हैं उनकी तरफ से ग्रैटिट्यूड। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये लगता है कि जो पावर ऑफ साइलेंस है दैट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद एज? इफ वी सी यंगस्टर्स ऑफ मे बी यंग यपीज ऑफ 18 to 25, उनको साइलेंट और ये बताना बहुत मुश्किल है। देन वी सी ग्रेजुअली आर सिचुएशन, मतलब आपने कहा डिटैच हो जाओ।
हाउ मेनी बाबा के ज्ञान में आप कितनी हमारी युवा बहने हैं, भाई है, कुमार है, कुमारियां हैं, तो क्योंकि ये तो आत्मस्थिति की बात है, इसमें शरीर की सिचुएशन कुछ भी हो, पर अगर आप में पावर है तो हमने तो देखा है हमारे बाबा के बच्चे, युवा बच्चे भी कितने शांत और शीतल स्थिति वाले होते हैं। आज की दुनिया में जो युवा वर्ग है उनको अगर हम उनके तरीके से ज्ञान देंगे, जो हमारी यूथ विंग भी कर रही है और हमारे विदेश के भाई बहनों के पास भी बहुत अच्छे अच्छे युवाओं को कैसे हम सिखा सकते हैं, वो स्टाइल के लेक्चर्स प्रोग्राम्स भी बहुत होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, युवाओं में भी जो बच्चे बाबा के बनते हैं कितनी उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। ये आत्मा की स्थिति की बात है, इसलिए शरीर की, संसार की कोई भी भौतिक सिचुएशन विघ्न रूप नहीं बन सकती।
दीदी आपने पहले भी पर्सनालिटी वर्ड यूज किया था, बिकॉज व्हाट आई फाइंड पर्सनालिटी इज सम टोटल ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। इन चारों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हाउ टू गेन दैट?
मुश्किल तो है पर कर सकते हैं, और हमारे पास सैंपल भी है, ऐसे आत्माएं बने भी हैं। थोड़ा सा अगर हम, क्योंकि युवाओं की जो उनकी सीखने की पद्धति है वो अलग है, मैच्योर की अलग है, कुमारियों की अलग है, बड़ी बहनों की अलग है, तो वो चीज है, पर नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल वे से, और हमारी कई बहनें हैं, हमारे पास ऐसे कई स्पीकर्स भी हैं, तो वो अगर आप थोड़ा कलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें से। और आप घर में देखो जो माताएं ज्ञानयुक्त है, अभी भी देखो वो कौन बॉम्बे का एक्टर सिद्धार्थ भाई, वो तो ज्ञान में नहीं था ना, पर उसकी मां की जो स्टेज थी उसने कितनी सेवा की। तो हमारी माताओं में भी ऐसी ताकत वाली माताएं हैं जो इतना ज्ञान योग से अपनी अवस्था बनाई हुई है कि वो अपने युवा बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। वो भाई भी तो मां से ही तो प्रभावित हुआ था। बेस्ट कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण वो सर्वोत्तम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, विज्ञान प्रमाण, कितने भी प्रूफ आप दो, परंतु प्रैक्टिकल हम जब अपनी स्थिति बनाते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे पोतरे, हमारे परिवार वाले भी महसूस करते हैं कि ज्ञान में जाने से हमारी दादी माँ ऐसी ऐसी।
ओम शांति दीदी जी। जैसे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार होते हैं, हम डेली रूटीन में, मतलब बाबा के ज्ञान में आने के बाद वो चीजें कम हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें टकराती है, जैसे गुस्सा करना, कभी कभी रोष में आ जाना, पर हमें याद आता है कि नहीं हम देवता बन रहे हैं। तो ऐसे में शांति का सम्मान लगातार लेना सही है?
नहीं, अब हमें पता है कि हमारे पुराने संस्कार कौन से, हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से। ज्ञान में नहीं थे तो हम समझते कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए लोग भी कई मानते हैं कि भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सुटेढ़ी, वो कभी सीधी नहीं होती। ऐसे हमारे संस्कार बदल नहीं सकते हैं, शरीर छोड़ेंगे उसके साथ ही वो जाएंगे, ऐसे वो कहते हैं। परंतु बाबा ने हमें बताया कि अशांति के, गुस्से के, अपवित्रता के या चिंता के कुछ भी, वो हमारे ओरिजिनल रियल संस्कार नहीं है, ये मध्य के संस्कार है। द्वापर युग में जब हम बॉडी कॉन्शियस बने फिर ये स्वभाव संस्कार बने, इसलिए ये बदल सकते हैं, ऐसे नहीं है कि ये नहीं बदल सकते, पर बहुत लगातार अभ्यास चाहिए। इतना शांति और प्रेम हम अपने आप में भरें कि गुस्से के संस्कार को बदल सके, इतना प्यूरिटी का स्वरूप हम याद करें और बाबा के से वो गुण हम लें पवित्रता का, ताकि हमारे अंदर गंदी दृष्टि वृत्ति ना हो। पर उसके लिए आजीवन अभ्यास चाहिए, तभी तो बाबा कहता है जहां तक जीना है ज्ञानामृत पीना है, क्योंकि ये लंबे समय के जो कड़े संस्कार है उसको बदलने के लिए रियलाइजेशन बहुत चाहिए कि ये राइट नहीं है, ये मेरे में नहीं होने चाहिए। अब मैं भगवान से रोज पढ़ती हूं, मैं रोज सत्य सुनती हूं, अब ये मुझे शोभा नहीं देते हैं, ये रियलाइजेशन जितनी गहरी होंगी और अभ्यास कि मैं ओरिजिनली शांत और शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो वो शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी। पर रियलाइजेशन, सिर्फ रिपीटेशन नहीं, रिवीजन नहीं, रियलाइजेशन तो जरूर बदलते हैं। ये भी परिवर्तन देखा है, खुद में भी देखा है, कईयों में भी देखा है, पर वो इतने कड़े होते हैं कि फिर जागते हैं, इसलिए फिर अटेंशन।
ओम शांति।
बस ना, लास्ट वन।
ओम शांति। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन चेंज अवर सेल्फ। ओके, बट समटाइम्स साइलेंस में किलर्स, साइलेंस है वो हमको मार देता है कभी भी।
साइलेंस
कैन किलर्स, हमें ही मार देता है कभी।
नहीं नहीं, वहां हमारे में बाबा कहते हैं ना कि सहन करना है, परंतु कहां तक सहन करना है, वो परखना भी जरूरी। हाँ, तो वो हमारे वैल्यूज एंड पावर्स का बैलेंस भी जरूर है भाई। प्यार से चलाना है पर डिसिप्लिन भी सिखा दे, तो वो परख शक्ति, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति है ना, कि कहां तक सहना है या कहां तक मुझे सामना करना है या चुप रहना है, स्पष्टता करनी है या चुप रहना है, वो परख शक्ति बहुत जरूर। नहीं तो फिर आप पॉजिटिव पावर से आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, पर पॉजिटिव पावर वैल्यूज के भी बैलेंस चाहिए। चलो, शांति की स्थिति में स्थित होते तीन मिनट बचे हैं, पर हर एक लक्ष्य रखें, बिल्कुल अपने आप को समेट लेना है। आसपास की व्यक्तियों से, चीजों से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाना है। मस्तक बीच भ्रुकुटी में अपने निराकार आत्मस्वरूप में केंद्रित हो जाना है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मैं शांत और स्थिर हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, मेरा मन अंतर्मुखी बनने लगता है। मैं स्वयं के प्रति अंतर्मुखी होने लगती हूँ। बुद्धि एकाग्र होने लगती है। शांति के अखुट भंडार, शांति दाता की संतान, मैं शांति दूत हूँ। मुझे शांति की वाइब्रेशंस फैलाने, मुझे अपने अस्तित्व से मन के सूक्ष्म भावों से विचार और वाइब्रेशन से स्मृति और वृत्ति से शांति फैलाने ओ